एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की जिनका नाम सुनते ही शायद कुछ लोगों को कबूतर याद आते हैं, कुछ को कंट्रोल, लेकिन जिनके विचारों का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ा है, परवरिश, शिक्षा, समाज, यहाँ तक कि आजकल की टेक्नोलॉजी पर भी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बीएफ स्किनर की, बरहस फ्रेडरिक स्किनर। एक बहुत प्रभावशाली, हाँ कभी कभी विवादास्पद भी रहे, लेकिन ऐसे विचारक जिन्हें समझना जरूरी है।
हाँ, क्योंकि उन्होंने मानव व्यवहार को देखने का एक बिल्कुल नया वैज्ञानिक नजरिया देने की कोशिश की, व्यवहारवाद, जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। और खासकर उनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग।
सही, स्किनर 1904-1990 उस दौर के विचारक हैं जब दुनिया को लग रहा था कि विज्ञान और तकनीक से हर मुश्किल हल हो सकती है।
अच्छा,
तो उन्होंने सोचा कि मानव व्यवहार को भी वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है और शायद बेहतर भी बनाया जा सकता है।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे। स्किनर की कहानी, उनके आइडियाज, उनकी किताबें और आज वो कितने प्रासंगिक हैं, इस पर बात करेंगे। हमने इसके लिए उनकी जीवनियों और उनके काम के विश्लेषणों का सहारा लिया है।
चलिए शुरू करते हैं।
तो स्किनर का जन्म हुआ 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में, 1904 में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। कैसा माहौल था तब?
सोचिए, वो राइट बंधुओं की पहली उड़ान का जमाना था। हेनरी फोर्ड की गाड़ियां बन रही थी। एक गजब का आत्मविश्वास था लोगों में
कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ, कि अगर किसी चीज को ठीक से समझ लें, उसके पुर्जे जान लें, तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, चाहे वो मशीन हो या समाज।
और मनोविज्ञान में उस वक्त क्या चल रहा था? फ्रॉइड का नाम तो बहुत बड़ा था।
बिल्कुल, सिगमंड फ्रॉइड का दबदबा था, अचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं, सपनों का मतलब निकालना, फोकस अंदर की दुनिया पर ज्यादा था। लेकिन तभी ना एक नई सोच उभर रही थी, व्यवहारवाद। जॉन बी वॉटसन, इवान पेवलोव, इन लोगों ने कहा कि भाई मनोविज्ञान को साइंस बनना है तो उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं।
मतलब बाहरी व्यवहार।
हाँ, बाहरी व्यवहार और वो माहौल, वो पर्यावरण जो उसे प्रभावित करता है। मन के अंदर क्या है वो तो अटकलबाजी है। स्किनर इसी व्यवहारवादी लहर के सबसे बड़े झंडा बरदार बने और उन्होंने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया।
उनके अपने बचपन में ऐसा क्या था जिसने उन्हें इस तरफ मोड़ा होगा? कोई खास बात?
उनका परिवार एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार था। पिता वकील थे, माँ घर संभालती थी, लेकिन हाँ, बचपन से ही उन्हें चीजें बनाने, मशीनें खोलने जोड़ने में बड़ी दिलचस्पी थी।
अच्छा,
उन्होंने रोलर स्कूटर बनाया, एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जो बिना रुके चलती रहे, परपेचुअल मोशन मशीन। एक दुखद घटना भी हुई, उनके छोटे भाई एडवर्ड की अचानक मौत हो गई थी। इसका असर तो पड़ा ही होगा।
मैंने सुना है वो पहले लेखक बनना चाहते थे, साहित्य में रुचि थी।
हाँ बिल्कुल, कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था। मशहूर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने थोड़ी तारीफ भी की थी उनकी।
फिर क्या हुआ?
ग्रेजुएशन के बाद एक दौर आया जिसे वो खुद डार्क ईयर या अंधकार वर्ष कहते हैं। लिखने की बहुत कोशिश की पर बात बनी नहीं। उन्हें लगा कि सिर्फ लिखने से दुनिया की समस्याएं हल नहीं होंगी।
एक तरह का मोहभंग।
हाँ, मोहभंग। और यहीं से रास्ता बदला। उन्होंने पावलोव के कुत्तों वाले प्रयोगों के बारे में पढ़ा, वॉटसन के लेख पढ़े। उन्हें लगा कि अरे, व्यवहार को समझने का ये ज्यादा ठोस वैज्ञानिक तरीका हो सकता है।
और वो मनोविज्ञान पढ़ने चले गए?
जी हाँ, 1928 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां विलियम क्रॉपर के साथ जानवरों पर प्रयोग करने लगे और वहीं उन्होंने अपना वो मशहूर स्किनर बॉक्स ईजाद किया।
हाँ, ये स्किनर बॉक्स का जिक्र बहुत आता है, क्या था ये असल में, थोड़ा समझाएंगे?
देखिए, ये एक छोटा सा नियंत्रित डिब्बा था। उसमें चूहा या कबूतर जैसे जानवर को रखा जाता था। अंदर एक लीवर या बटन होता था। जानवर अगर उस लीवर को दबाता तो उसे खाना या पानी मिलता, मतलब एक इनाम।
स्किनर ये देखना चाहते थे कि जानवर कितनी जल्दी सीखता है कि लीवर दबाने से फायदा होगा।
अच्छा, मतलब काम और उसके नतीजे का सीधा कनेक्शन।
बिल्कुल, उनके व्यवहार पर उनके एक्शन के परिणाम का क्या असर होता है, यही वो स्टडी कर रहे थे। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बुनियाद थी।
फिर तो उनका एकेडमिक करियर चल पड़ा, मिनेसोटा, इंडियाना, फिर वापस हार्वर्ड आ गए। वो द्वितीय विश्व युद्ध वाला प्रोजेक्ट पिजन का क्या किस्सा है? हाँ हाँ हाँ, वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कोशिश की थी कि कबूतरों को ट्रेनिंग देकर मिसाइलों को गाइड करने के काम में लाया जाए।
क्या बात है।
प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ, पर यह दिखाता है कि स्किनर अपने सिद्धांतों को कहां कहां लागू करने की सोचते थे। एकदम हटकर सोच थी।
चलिए अब उनके सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे अलग था?
देखिए, पैवलोव ने दिखाया था कि कैसे दो चीजें जुड़ जाती हैं दिमाग में। घंटी बजी, खाना आया, तो घंटी बजने पर ही लार आने लगी। ये ज्यादातर अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पर था।
हाँ, जैसे लार आना।
स्किनर ने पूछा कि भाई हम जो काम अपनी मर्जी से करते हैं, चलना, बोलना, पढ़ना, काम करना, वो कैसे सीखते हैं? यहाँ सिर्फ जुड़ाव की बात नहीं है। यही उनका सिद्धांत आता है
कि व्यवहार उसके नतीजे पर निर्भर करता है।
एकदम सही, कोर आइडिया यही है। व्यवहार उसके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल होता है। अगर कोई काम करने पर अच्छा नतीजा मिलता है, जिसे स्किनर ने कहा पुनर्बलन, तो हम वो काम दोबारा करेंगे।
जैसे बच्चे ने होमवर्क किया, माने शाबाशी दी।
बिल्कुल, वो शाबाशी सकारात्मक पुनर्बलन है। बच्चा आगे भी होमवर्क करेगा। और अगर किसी काम का नतीजा बुरा होता है, दंड, पनिशमेंट, तो हम उस काम को कम करने लगते हैं।
ये तो हम रोज देखते हैं अपने आसपास। ऑफिस में अच्छा काम करो तो बोनस, गलती करो तो डांट।
हाँ, लेकिन स्किनर ने इसे और गहराई से स्टडी किया। उन्होंने दिखाया कि इनाम कब और कितनी बार मिलता है, इसका सीखने पर बहुत फर्क पड़ता है। इसे उन्होंने कहा पुनर्बलन अनुसूचियां, रीइन्फोर्समेंट स्केड्यूल्स।
अच्छा, मतलब हमेशा इनाम देना जरूरी नहीं।
हाँ, कई बार रुक रुक कर बिना बताए इनाम देना ज्यादा असरदार होता है। सोचिए जुए की मशीन कैसे काम करती है, या सोशल मीडिया पर लाइक्स। वो लगातार नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं, इसीलिए हम बार बार चेक करते रहते हैं।
बाप रे, ये तो हम सब पर लागू होता है।
उन्होंने शेपिंग का तरीका भी बताया, मतलब कोई मुश्किल चीज सिखानी हो तो एकदम से पूरी चीज नहीं, बल्कि उससे मिलते जुलते छोटे छोटे सही कदमों पर इनाम देते जाओ, धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाओगे।
लेकिन स्किनर सिर्फ बाहरी व्यवहार पर ही नहीं रुके हैं ना?
उन्होंने कट्टरपंथी व्यवहारवाद की भी बात की। ये क्या था?
ये एक और बड़ा कदम था। देखिए, ज्यादातर पुराने व्यवहारवादी कहते थे कि सोचना, महसूस करना, ये सब मन की बातें हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, तो इन्हें मनोविज्ञान से बाहर रखो।
अच्छा,
स्किनर ने कहा नहीं, सोचना, महसूस करना, कल्पना करना, ये भी व्यवहार ही है, बस ये निजी हैं, दूसरों को दिखते नहीं, लेकिन है ये भी व्यवहार ही, और इन्हें भी उन्हीं वैज्ञानिक नियमों से समझा जा सकता है जिनसे हम चलने या बोलने को समझते हैं।
मतलब विचार और भावनाएं भी सीखी जाती हैं। हाँ, और उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि हमारी भावनाएं या विचार हमारे व्यवहार का कारण बनते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आया इसलिए मैं चिल्लाया।
हाँ, यही तो लगता है।
स्किनर कहते थे नहीं, गुस्सा आना और चिल्लाना दोनों ही किसी बाहरी स्थिति या हमारे पिछले अनुभवों का नतीजा है। असली कारण बाहर ढूंढना होगा, पर्यावरण में, हमारी कंडीशनिंग में।
ये तो बहुत रेडिकल बात है, विचारों और भावनाओं को कारण ना मानना।
बिल्कुल, और यहीं से उनके विचार समाज पर लागू होने लगे और ज्यादा विवादास्पद हो गए। सामाजिक इंजीनियरिंग का उनका विचार।
हाँ, ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर लगता है, समाज को इंजीनियर करना।
स्किनर का तर्क सीधा था, अगर हम समझ गए हैं कि व्यवहार कैसे काम करता है, कैसे उसे बदला जा सकता है, तो क्यों ना इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर समाज बनाने में करें।
बेहतर मतलब?
जहां अपराध कम हो, लोग सहयोग करें, बच्चे अच्छे से सीखें, सब ज्यादा खुश हों। लेकिन इसके लिए हमें अपनी कुछ प्यारी धारणाओं को चुनौती देनी होगी, खास तौर पर स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की धारणा को।
ओहो, ये तो बड़ा मुद्दा है।
स्किनर मानते थे कि ये जो हमें लगता है ना कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो चाहें चुन सकते हैं, ये एक भ्रम है। हमारा हर चुनाव, हर व्यवहार, हमारे जीन्स, हमारे पर्यावरण और हमारे पिछले अनुभवों का नतीजा है। स्वतंत्रता एक एहसास भर है, असलियत नहीं।
ये मानना तो बहुत मुश्किल है, और इसी सोच पर उन्होंने किताबें भी लिखी। वो वॉल्डन 2 का जिक्र आता है।
हाँ, वॉल्डन 2 1948 एक उपन्यास है, एक काल्पनिक समुदाय की कहानी जो पूरी तरह व्यवहारवादी सिद्धांतों पर चलता है। वहां सब खुश हैं, कोई झगड़ा नहीं, बच्चे वैज्ञानिक तरीके से पाले जाते हैं।
सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कंट्रोल नहीं है?
यही सवाल है, क्या डिजाइन की हुई खुशी असली खुशी है? क्या कुशलता के लिए आजादी कुर्बान कर देनी चाहिए? ये किताब 60s-70s में काफी पॉपुलर हुई। कुछ लोगों ने तो सच में ऐसे समुदाय बनाने की कोशिश भी की।
अच्छा, इससे पहले भी उनकी किताबें आई थी?
हाँ, उनकी पहली बड़ी अकादमिक किताब थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स 1938, जिसने उनके प्रयोगों का वैज्ञानिक आधार रखा। फिर आई साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों को सरकार, धर्म, अर्थव्यवस्था जैसे बड़े सामाजिक दायरों पर लागू किया।
और फिर वो किताब जिसने भाषा विज्ञान में हंगामा खड़ा कर दिया, वर्बल बिहेवियर 1957।
बिल्कुल, स्किनर ने कहा कि भाषा भी एक सीखा हुआ व्यवहार है। हम बोलना सीखते हैं क्योंकि सही शब्द बोलने पर हमें इनाम मिलता है, चाहे वो कोई चीज हो या माँ बाप की तारीफ।
लेकिन इसकी तो बहुत आलोचना हुई नोम चॉम्स्की ने।
हाँ, नोम चॉम्स्की जो उस वक्त उभरते हुए भाषा विज्ञानी थे, उन्होंने इसकी बहुत तीखी आलोचना की। चॉम्स्की ने कहा कि भाषा इतनी जटिल है, बच्चे इतनी जल्दी और इतने क्रिएटिव तरीके से भाषा सीखते हैं कि उसे सिर्फ इनाम और सजा के सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। हमारे अंदर भाषा सीखने की कोई गहरी जन्मजात क्षमता होती है।
और इस बहस का क्या नतीजा निकला?
इस बहस ने मनोविज्ञान में एक बड़ा मोड़ लाया जिसे संज्ञानात्मक क्रांति कहा जाता है। ध्यान वापस दिमाग की अंदरूनी प्रक्रियाओं, सोचना, समझना, याद रखना पर गया।
और फिर आई उनकी शायद सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद किताब बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971। नाम ही काफी है।
हाँ, यहाँ स्किनर ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता, फ्रीडम और गरिमा, डिग्निटी के ऊंचे आदर्श है ना, ये ना सिर्फ भ्रम है बल्कि खतरनाक भ्रम है।
खतरनाक क्यों?
क्योंकि जब तक हम ये मानते रहेंगे कि इंसान अपनी मर्जी से सब करता है और वही अपने कर्मों का अकेला मालिक है, तब तक हम अपनी बड़ी समस्याओं जैसे युद्ध, प्रदूषण, बढ़ती आबादी का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें व्यक्ति को दोष देने के बजाय उन बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा जो उसके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं।
बाप रे, ये तो पूरी नैतिकता और जिम्मेदारी की धारणा पर ही सवाल है।
बिल्कुल, और इस किताब ने उन्हें दार्शनिकों, धार्मिक नेताओं, मानवाधिकारों, कार्यकर्ताओं सबके निशाने पर ला दिया। पर स्किनर अपनी बात पर अड़े रहे।
अगर हम उन्हें उस वक्त के दूसरे बड़े विचारकों से तुलना करें
तो तस्वीर और साफ होती है। फ्राइड से तो वो एकदम उल्टे थे ही, एक अंदर देख रहा था, दूसरा बाहर। पावलोव और वॉटसन की नींव पर उन्होंने इमारत खड़ी की, पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन जोड़कर बहुत आगे निकल गए।
चॉम्स्की उनके बड़े आलोचक बन गए भाषा के मामले में।
हाँ, और सोचिए, एक तरफ जॉन पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी थे जो कह रहे थे कि इंसान पूरी तरह आजाद है, अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ स्किनर कह रहे थे कि आजादी भ्रम है, सब कुछ निर्धारित है। बिल्कुल दो ध्रुव।
और उस समय टेक्नोलॉजी को लेकर भी चिंताएं थी, लुईस मम्फर्ट जैसे लोग।
बिल्कुल, मम्फर्ट जैसे विचारक चेतावनी दे रहे थे कि कहीं तकनीक हमें अमानवीय न बना दे। स्किनर का जो डिजाइन किया हुआ समाज का आइडिया था, वो इन चिंताओं से टकराता था। लोग जॉर्ज ऑरवेल की 1984 या एल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तुलना स्किनर के वॉल्डन 2 से करने लगे। डर था कि कहीं ये अच्छी मंशा वाला कंट्रोल तानाशाही ना बन जाए।
तो स्किनर वाकई अपने समय के बहुत बड़े और चुनौतीपूर्ण विचारक थे। अब बात करते हैं उनकी विरासत की। क्या उनके आइडियाज आज भी इस्तेमाल होते हैं?
अरे बहुत ज्यादा। शायद सबसे बड़ा उदाहरण है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी ABA।
ABA ये क्या है?
ये स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित एक थेरेपी है, खास तौर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों और दूसरी विकासात्मक अक्षमताओं वाले लोगों की मदद करने में ये बहुत सफल रही है। उन्हें नई स्किल सिखाने, बात करना सिखाने, समस्या वाले व्यवहार को कम करने में ABA का बहुत इस्तेमाल होता है।
अरे वाह, ये तो बहुत ही सकारात्मक उपयोग है।
हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में?
शिक्षा में भी उनका असर गहरा है। उनकी जो टीचिंग मशीनें थीं या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का आइडिया था कि सीखने की चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, हर सही कदम पर तुरंत फीडबैक दो।
हाँ।
आज के जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, लैंग्वेज लर्निंग एप्स हैं जैसे ड्यूओलिंगो, वो काफी हद तक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। छोटी छोटी यूनिट्स, तुरंत पता चलना कि सही किया या गलत, पॉइंट्स मिलना, ये सब स्किनेरियन है।
अच्छा, और भी कुछ?
हाँ, मैनेजमेंट में, जानवरों की ट्रेनिंग में, हर जगह जहाँ व्यवहार को बदलने या सिखाने की जरूरत होती है, उनके सिद्धांत काम आते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, विवाद भी कम नहीं है उनकी विरासत से जुड़े।
नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। सांस्कृतिक तौर पर वो अक्सर एक ठंडे मशीनी भविष्य, एक कंट्रोल करने वाली ताकत के प्रतीक बन गए। बहुत लोगों को लगा कि वो इंसान को बस एक मशीन समझ रहे हैं जिसमें आत्मा, भावनाएं, आजादी की कोई कीमत नहीं। कंट्रोल शब्द ही बहुतों को डराता है।
हाँ, जैसे वो फिल्म थी अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, उसमें जैसे दिमाग को कंडीशन किया जाता है।
बिल्कुल, उसे कई लोगों ने स्किनर के विचारों के खतरनाक अंजाम की तरह देखा, हालांकि स्किनर का मकसद बुराई बढ़ाना नहीं, कम करना था।
और आज के डिजिटल युग में क्या उनके विचार और भी ज्यादा सच लगने लगे हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ है। सोचिए ना, आज जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, डैनियल कनमन, रिचर्ड थेलर जैसे लोग।
हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता
से नहीं, ये स्किनर की बात को ही आगे बढ़ाता है। नज थ्योरी है, लोगों को हल्के से सही दिशा में धक्का देना बिना जबरदस्ती किए। ये भी तो व्यवहार को प्रभावित करना ही है।
और सोशल मीडिया, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग,
यही तो स्किनर सबसे ज्यादा प्रासंगिक और शायद डरावने भी लगते हैं। ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं, लाइक्स मिलते हैं, गेम्स में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, शॉपिंग साइट्स पर लिमिटेड टाइम डील्स आती हैं, ये सब क्या है?
क्या
ये स्किनर की उन्हीं पुनर्बलन अनुसूचियों का बहुत चालाकी से किया गया इस्तेमाल है। ये हमें बार बार फोन चेक करने, स्क्रोल करते रहने या कुछ खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। ये प्रेरक तकनीकें, पर्सुएसिव टेक्नोलॉजीज लगातार हमारे व्यवहार को ढाल रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता।
तो स्किनर ने जो सवाल उठाए थे कि हम कितने स्वतंत्र हैं, क्या हमारा पर्यावरण हमें नियंत्रित कर रहा है, क्या ये नैतिक है, ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
निश्चित रूप से, उनके कुछ कोट्स भी उनके विचारों की ताकत दिखाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, भावनाएं उन काल्पनिक कारणों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्हें हम आमतौर पर व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।
मतलब हम जो कहते हैं गुस्से में कर दिया, वो असली कारण नहीं है।
स्किनर के हिसाब से नहीं, गुस्सा और वो काम दोनों किसी और चीज का नतीजा है। या उनका वो मशहूर वाक्य, हम स्वतंत्रता का जोखिम नहीं उठा सकते। उनका मतलब तानाशाही नहीं था, बल्कि ये कि जब तक हम इस स्वतंत्रता के भ्रम में रहेंगे, हम विज्ञान का इस्तेमाल करके बेहतर दुनिया नहीं बना पाएंगे।
और वो लैब वाली कहावत, चूहा हमेशा सही होता है।
हाँ, मतलब अगर आपका प्रयोग आपकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो थ्योरी गलत हो सकती है, चूहा नहीं। अपने डेटा पर भरोसा करो, अपनी धारणाओं पर नहीं।
और ये सवाल तो आज भी सोचने लायक है। असली समस्या यह नहीं है कि मशीनें सोचती हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या मनुष्य सोचते हैं।
कहीं हमारा ज्यादातर सोचना भी बस सीखी हुई प्रतिक्रियाएं तो नहीं? शिक्षा पर भी उनका नजरिया अलग था। शिक्षा वो है जो सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद बच जाती है। मतलब रटना नहीं, व्यवहार बदलना असली शिक्षा है।
और हमें महान पुस्तकें नहीं पढ़ानी चाहिए, हमें पढ़ने का शौक सिखाना चाहिए।
बिल्कुल, आदतें बनाना, व्यवहार बदलना, और उनका पूरा मिशन शायद इस एक वाक्य में है। आज दुनिया के सामने प्रमुख समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हम मानव व्यवहार की अपनी समझ में सुधार करें।
उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और दिलचस्प पहलू भी हैं, जैसे वो लेखक बनने का सपना और डाकिया।
हाँ, प्रोजेक्ट पिजन भी, और ये भी कि वॉल्डन 2 से प्रेरणा लेकर सच में कुछ कम्युनिटीज बनी जिन्होंने उनके सिद्धांत अपनाने की कोशिश की।
और अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले भी उन्होंने भाषण दिया था।
हाँ, ल्यूकीमिया से जूझ रहे थे, पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को अपनी मृत्यु से सिर्फ 8 दिन पहले एक बहुत दमदार भाषण दिया। ये उनका जुनून दिखाता है। उन्हें बड़े सम्मान भी मिले, जैसे नेशनल मेडल ऑफ साइंस, और उतनी ही कड़ी आलोचना भी।
वाकई एक जटिल और प्रभावशाली शख्सियत।
बिल्कुल, स्किनर हमें बहुत असहज करने वाले लेकिन जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं।
तो चलिए, आज के इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा हमने अभी बात की, आज के डिजिटल दौर में जहां एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया एप्स लगातार हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उसे अपनी मर्जी से ढाल रहे हैं, क्या स्किनर का ये सवाल और भी ज्यादा तीखा नहीं हो गया है कि हम असल में कितने स्वतंत्र हैं? जब हमारा पूरा माहौल ही हमें खास दिशा में नज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा हो, तो हमारी अपनी मर्जी, हमारी अपनी पसंद कितनी बचती है? सोचिएगा जरूर इस पर।
बिल्कुल, सोचने वाला सवाल है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।